मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे एक अलग ही विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो आपके मेंस के फर्स्ट पेपर का भी विषय है और सच पूछिए तो कहीं ना कहीं फोर्थ पेपर से भी संबंध रखता है और निबंध से तो संबंध रखता ही है, और वह है मुक्त समाज। लेकिन इससे पहले मैं एक समाचार जो है उसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। अभी आपने न्यूज़ में सुना और टीवी चैनल्स पर आपने देखा भी होगा कि संयुक्त राष्ट्र में अभी एक संवाद किया जा रहा है, मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण एवं सूखा। मरुस्थलीकरण का मतलब है डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। भूमिक्षरण का मतलब है कि भूमि का क्षरण होता जा रहा है, डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है, और सूखा यानी कि अकाल पड़ रहा है, वर्षा कम हो रही है। इस विषय पर एक संवाद आयोजित था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया और न्यूज के जरिए जो हम तक पहुंचा है, उसमें एक जो डेटा है वो हमारे बहुत काम का है और आपको इसे नोट कर लेना चाहिए, बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, और चूंकि ये सीधे सीधे मरुस्थल से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत काम का भी है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 10 साल में, एक दशक में लगभग 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा गया है। 30 लाख हेक्टेयर, याद रखिए ये हेक्टेयर है, एकड़ नहीं, राइट। 30 लाख हेक्टेयर पिछले 10 सालों में हमने इतना वन विकसित किया है। इसके बाद उन्होंने आगे ये बताया कि जो हमारा कुल क्षेत्रफल है उसका अब हमने 1/4 तक बढ़ा दिया है, मतलब 25% कर दिया है। ठीक है, ये एक डेटा है। एक डेटा उन्होंने और दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सन 2030 तक 2.6 करोड़, याद रखिए 2.6 करोड़ हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको उपयोगी बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। यानी कि हमारा लक्ष्य है कि सन 2030 तक हम अपने यहाँ के 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि को, जो बंजर है, जहाँ अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, उसे हम उपयोगी बना लेंगे, यानी कि उसमें कुछ न कुछ का उत्पादन होने लगेगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हैं। दोस्तों, जो मरुस्थलीकरण या भूमि डिग्रेडेशन है, सच पूछिए तो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो या मेंस। जब हम डिजर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जैसा कि मैं शुरू से आप सबसे कहता आ रहा हूं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह बात होती है कि हम उसके बेसिक्स को समझें। सामान्यतया होता क्या है कि जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, रेतीला क्षेत्र जहां रेती रेत है, बहुत गर्मी पड़ रही है, मरुस्थल है। लेकिन याद रखिए कि केवल यही मरुस्थल नहीं है। जो मरुस्थल की जो परिभाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, और इसलिए सुना रहा हूं कि आप सब इस पर विचार करें। जब आप इस पर थोड़ा भी वक्त लगा करके विचार करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो बेसिक्स पर पकड़ होती है वो मजबूत होती चली जा रही है और दिमाग में स्पष्टता आती जा रही है। और इसी तरह से आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी भी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखिए क्या कहा है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़कर सुना देता हूं। अन्य कारकों के अतिरिक्त, धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे, पॉज दे करके पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा सोचेंगे भी, तब आपके दिमाग में क्लियर होगा। देखिए क्या करें, अन्य कारकों के अतिरिक्त, और भी बहुत से फैक्टर हैं लेकिन उनके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, बहुत से फैक्टर्स हैं लेकिन दो फैक्टर यहां वो नाम ले रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ऊसर यानी कि एरिड, इंग्लिश में कहते हैं एरिड, अर्ध ऊसर, सेमी एरिड एवं शुष्क उप आद्र, सब ड्राई ह्यूमिड क्षेत्रों में भूमि का अवनयन मरुस्थलीकरण है। अब आप देखिए कि जब आप इस परिभाषा को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो मरुस्थल की जो परिभाषा है वो व्यापक हो जाती है। उसमें दिया हुआ है ड्राई सब ह्यूमिड, राइट। इंग्लिश में है दोस्तों, डेजर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज लैंड डिग्रेडेशन, देखिए लैंड का डिग्रेडेशन होना ही मरुस्थलीकरण है, इन एरिड semi-arid and dry sub-humid area resulting from various factors including climatic variations and human activities. आपको चाहिए कि आप इस पर इत्मीनान से सोचें, विचार करें, तब कहीं जाकर आप इस टॉपिक पर अपनी अच्छी पकड़ बना पाएंगे. और यदि प्री एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आप उस क्वेश्चन से निपट भी पाएंगे. मैं जानबूझ करके निपट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ. दोस्तों आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं, मुक्त समाज. इस विषय को मैंने क्यों लिया है आप समझ सकते हैं कि अभी जो G7 राष्ट्रों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें एक सेक्टर मुक्त समाज का भी था. मुक्त समाज का विषय रखा गया था, टॉपिक रखा गया था और उसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस भी किया. हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एड्रेस किया है, अगर आप चाहें तो उसमें से बेहतर होगा कि एक दो कोट नोट कर लें ताकि निबंध में यदि पूछ लिया जाता है या और भी कहीं इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप उसमें लिख सकें. हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो ये कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता, देखिए मैं जानबूझ करके दबाव डाल करके बोल रहा हूं ना, लोकतंत्र और स्वतंत्रता, इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड में है, भारत की सभ्यता के मूल्य हैं. भारत की सभ्यता के मूल्य हैं, यानी कि हमारा जो ये समाज है, ये पूरा का पूरा हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है और बहुत ही स्वतंत्र समाज है. और ये भारतीय सभ्यता, ये कोई ऐसा नहीं है कि जब हमने संविधान लागू किया है तब ये सब आया है, शुरू से ही हमारे यहाँ चलता चला आ रहा है. और फिर आप इसका बल्कि मूल्यांकन कर सकते हैं पूरी के पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के और आज तक. और चलिए आज तक की तो बात हम छोड़ दें, 1947 से जब हम आज़ाद हुए, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, लेकिन इससे पहले भी जो भारतीय समाज था वो बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र और स्वतंत्रता को महत्व देने वाला समाज था. बेहतर होगा कि आप सब इस पर थोड़ा विचार करें, इसको प्रूफ करें कि क्या ये सच में था, उदाहरणों के जरिए करें अगर आपने हिस्ट्री की तैयारी कर ली है तो. अब आप देखें कि फिर उन्होंने कहा, जो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से जो स्वतंत्रता को डिफाइन किया है उन्होंने, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी परिभाषाओं को लगातार बदलता चला जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा. ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन कहने का मतलब है जो सोशल मीडिया है उसके लिए वो ऑनलाइन कह रहे हैं, और ऑफलाइन का मतलब है कि जो हम रह रहे हैं, जो हम समाज में इंटरेक्ट करते हैं, उनको जो अभिव्यक्ति की हमने स्वतंत्रता दी है उसकी रक्षा करना और लोकतंत्र को बचा कर रखना, इन्हें बचा करके रखना है. और इन्हें बचा कर रखने के लिए जो भी थ्रेट्स हमारे सामने हैं, आज इनके विरुद्ध में जो भी चुनौतियां हैं, जैसे अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप एक चुनौती हो सकती है, जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो डेफिनेटली एक चुनौती है. जैसे मान लीजिए कि आप वोट देने जा रहे हैं लेकिन वहाँ एक आतंकवादी गुट है और वो कहता है कि अगर आप वोट देंगे तो हम आपको मार डालेंगे और फलाना विस्फोट होगा, तो ये भी एक तरीके के स्वतंत्रता पर अंकुश है. और विद्वेषपूर्ण चरमपंथ, विद्वेषपूर्ण चरमपंथ है कि का मतलब है कि आप एकदम ईर्ष्या से भरे हुए हैं, अपनी ही चीज़ों को लेकर के सही मान रहे हैं और दूसरों से घृणा रख रहे हैं और बिल्कुल क्लाइमेक्स पर जा करके, और जहां पर किसी तरह का कोई लॉजिक काम नहीं करता है. गलत सूचना दे करके भी आप लोगों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, गलत सूचना दे करके उन्हें भटकाते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, उनके सोचने समझने की जो तटस्थता है, जो क्षमता है, उसे प्रदूषित करते हैं. और आर्थिक अवपीड़न, देखिए एक नए रूप में उन्होंने ये बात कही है. आर्थिक अवपीड़न का मतलब है जैसे कि अभी कोरोना का समय आ गया तो अब आप देखिए कि कितना आर्थिक संकट बढ़ गया है, इससे भी लोगों की रक्षा करनी है. ऐसा नहीं है कि हम लोगों को छोड़ दें कि भैया ये तुम्हारा मामला है, तुम अपनी आजीविका देखो करो, और हम फिर कहेंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल इनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं, इन्हें लोकतंत्र के का नागरिक बनाए हुए हैं. नॉट एट ऑल, हमें उन्हें आर्थिक अवपीड़न से भी बचाना है. ये बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही. दोस्तों अब हम इसका थोड़ा सा अगर मूल्यांकन करें तो आपको मूल्यांकन करने में दूसरी तरह की चीज़ें भारतीय समाज में दिखाई देंगी. और इसके लिए मैं आपको आज दो एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, एक बिजनेस स्टैंडर्ड का है और दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया का है. बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा, दो बहुत अच्छे डेटा दिए हुए हैं, और उसमें एक डेटा ये दिया हुआ है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, जिसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, धीरे धीरे हमारा देश उस सूचकांक में नीचे गिरता चला जा रहा है। मतलब अगर हम 180 देशों के आंकड़े लें तो भारत का स्थान 142वां है। तो जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सूचकांक में हम 142वें स्थान पर होंगे, तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि वास्तव में क्या सही अर्थों में हम मुक्त समाज के नागरिक हैं। पहला डेटा देखिए, मुख्य परीक्षा में अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो अपनी बात को बहुत ही तार्किक और तथ्यात्मक तरीके से रखना होगा, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद इसी में दूसरा डेटा दिया हुआ है जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अनुसार कि पिछले 161 वर्ष में जो राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं, तो 216 से 219 के बीच में उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 216 से 219 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 160% की वृद्धि हुई है। अक्सर हम लोग बात भी करते हैं, एडिटोरियल कमेंट भी आपको पढ़ने को मिलते हैं कि किसी पत्रकार को आपने, पत्रकार ने कोई आलोचना कर दी तो राजद्रोह का मुकदमा चला दिया, किसी ने कोई कार्टून बना दिया तो राजद्रोह का मुकदमा चला दिया, किसी ने कोई स्टेज पर कोई हंसी मजाक चुटकुले सुना दिए तो राजद्रोह का मुकदमा बन गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह का मुकदमा बना दिया गया। तो क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसी मुक्त समाज का संदेश देती हैं कि समाज मुक्त समाज है? तो दोस्तों, ये कुछ तथ्य हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से सवाल उठाए हैं और उसमें उसने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कुछ समय पहले ही सरकार ने, जो भी हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, के बारे में मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में आपसे बात भी की थी कि उनके लिए ये कहा गया है कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने उन अनुभवों को शेयर नहीं कर सकते, और अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो यहाँ फिर से सवाल आता है कि अगर हम अपने ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की अभिव्यक्ति पर इस तरह से प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या यह मुक्त समाज की ओर इंगित करता है? और दोस्तों, इसी विषय को लेकर के जो एक IPS ऑफिसर है विभूति नारायण जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है दैनिक हिंदुस्तान में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे आप पढ़ेंगे। और वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं। तो मुक्त समाज को लेकर के मुझे खासकर कुछ जो लेटेस्ट बातें हैं वो आप सबके सामने रखनी थी, ताकि यदि आप इस पर लिखें तो बहुत ही अपडेट तरीके से अपनी बात कह सकें। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से एक दोस्त का नाम है शिवानी शर्मा, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।